आकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं, तेरे प्रकाश की किरणें बाबा सच्चा पथ दिखलाती हैं।
बाबा ने वैसे तो सब कुछ सिखा दिया है, सुना दिया है, गीत भी अभी सुन रहे थे, कितनी शिक्षाएं बाबा ने हम सबको दी हैं, देता ही रहता है। और हम सभी शिक्षाओं में दूसरों को सुनाने में निपुण हो गए, होशियार हो गए हैं। सबको कोई न कोई अच्छी शिक्षा बता देंगे बाबा की। लेकिन बाबा जो हम बच्चों को रोज रोज मार्गदर्शन देते हैं, अगर हम सबके ध्यान पर वो बातें रहती हैं, स्मृति में रहती हैं, और उनको हम रिवाइज करते रहते हैं, तो हमारे मार्ग में आने वाली रुकावटें, बाधाएं सहज टल जाती, हट जाती हैं, क्योंकि स्मृति स्वरूप आत्मा सहज ही किसी भी बात को पार कर सकती है। अगर स्मृति में ही नहीं है, बाबा ने कोई युक्ति बताई है, कोई विधि बताई है, लेकिन समय पर वो याद नहीं आती है। कोई के पास शस्त्र बहुत अच्छे अच्छे हों, लेकिन जब योद्धा युद्ध के मैदान में हो या दुश्मन सामने आ जाए, उस समय वो अपने शस्त्रों को भूला हुआ हो, तो क्या होगा, हार खा लेगा। तो वो शस्त्र समय प्रति समय याद आने चाहिए, स्मृति में रहने चाहिए कि हमारे पास बाबा ने इतने अस्त्र शस्त्र दिए हैं कि कोई भी परिस्थिति आ जाए, कोई भी विघ्न आ जाए, किसी भी प्रकार की समस्या आए, वो कोई भी पेपर को हम सहज पार कर सकते हैं, क्योंकि बाबा ने हम सबको हर प्रकार की अच्छी अच्छी युक्तियां बताई हैं, विधियां बताई हैं। नाजुक समय आए, संस्कार स्वभाव, अनेक प्रकार के टकराव, शारीरिक मानसिक आर्थिक, सरकार के कई प्रकार के रुकावटें, क्योंकि ऊंची मंजिल के हम सब राही हैं। सतयुगी दुनिया की स्थापना करने के लिए निमित्त बनी हुई आत्माएं हैं, बाबा ने उसके लिए ये रुद्र ज्ञान यज्ञ रचा है। तो जब ऐसी ऊंची मंजिल है जहां पर हम सब पहुंचना चाहते हैं, उसके बीच में कोई न कोई साइट सीन्स, कोई न कोई रुकावटें आती ही हैं। और अगर कोई पेपर आ जाए, उसमें हम ठहर जाएं, वो रुकावट हमारे लिए विघ्न रूप बन जाए, मंजिल दूर लगने लगे या जीवन की नैया मझधार में लगने लगे, न इधर के हैं न उधर के, अब किधर जाएं, बाबा के तो बन गए, बाबा को जीवन दे दी, सोचा भी नहीं था कि ऐसे ऐसे पेपर आएंगे। लेकिन बाबा के बनने के बाद, दो चार दस साल चलने के बाद, अगर पेपर आना शुरू हो जाते हैं, देवी परिवार की तरफ से भी आते हैं, और भी कई प्रकार के अपने मानसिक, अपनी कमजोरियां, अपने स्वभाव, अपने संस्कार, भिन्न भिन्न रूप से पेपर बन करके आते हैं, और वो अगर रुकावट डाल देते हैं, तो बीच में ऐसा लगता है पता नहीं मंजिल पर पहुंचेंगे या नहीं। कई आत्माएं तो रास्ते में ठहर जाती हैं, कोई कोई पुरानी दुनिया का रास्ता ले लेती, लेकिन कई आत्माएं सब कुछ संघर्ष करते हुए, सामना करते हुए, एक बाबा दूसरा न कोई, हमने बाबा को जीवन दी है, अगर वो संपूर्ण निश्चय बुद्धि है, लक्ष्य पक्का है, तो वो ठहरती नहीं है, कितनी भी रुकावटें उनके सामने क्यों न बड़े से बड़ी आ जाए। तो आज बाबा ने पुरुषार्थ में रुकावट का एक बहुत छोटा सा कारण बताया। कौन सा बताया? अच्छा पहनना, अच्छा खाना। शार्ट में कहेंगे कोई न कोई रूप से आसक्ति, वृत्तियां अनासक्त नहीं है, आसक्त है, कहीं न कहीं झुकी हुई है, कहीं न कहीं लगी हुई है, कुछ न कुछ चाहनाए हैं, खाने की, पीने की, पहनने की, घूमने की। आजकल बहुत घूमने का भी शौक होता है, यहाँ जाऊं, वहां जाऊं, ऐसा करूं। बहुत प्रकार की ऐसी सूक्ष्म आसक्तियां हैं, वृत्ति अनासक्त नहीं बनी है, संसार असार नहीं लगता है। और हर प्रकार से त्याग की, वैराग्य की अंदर से वृत्ति नहीं है तो बुद्धि कहीं ना कहीं अटक जाती है, चाहे पहनने में, चाहे खाने में, चाहे घूमने फिरने में, चाहे किसी भी प्रकार की चाहनाओं में। तो बाबा ने कहा कि एक बहुत बड़ा एक रूप रुकावट का है ब्राह्मणों के आगे। अच्छा भोजन नहीं मिला तो भी रूठ जाएंगे, अच्छे कपड़े नहीं मिले या एक के पास अच्छे हैं दूसरे को अच्छे नहीं मिले। वो बिगड़ी पार्ट का भी समय था जब बाबा की मुरलियां चली, और बाबा हमेशा कहते थे बच्चे खद्दर का कपड़ा और 108 चत्ती लगा हुआ पहनो। बाबा की मुरलियां आती है ना, देह विमान मिट जाएगा, तो फटे हुए कपड़ों को पहले पहले क्या करते थे, शुरू शुरू में जब हम 1970-71 में मधुबन में आए तो उस समय बेगरी पार्ट से थोड़ा सा आगे बढ़े थे बाबा के अव्यक्त होने के बाद, लेकिन फिर भी बहुत ध्यान था, बहुत एक एक चीज पर कंट्रोल था। तो अगर हम लोगों के कोई कपड़े फट जाते थे तो भाइयों की आदत नहीं होती उनको सिलाई कर ले। चलो फिर सुनाता हूँ कहानी। उस समय मधुबन में बहुत कम भाई थे, भाई और बहनों की टोटल संख्या शायद 30-35-40 थी। जो भी आती थी पार्टियां, यही एक मधुबन छोटा सा था, 100 लोग भी आते थे तो कहते थे बहुत बड़ा ग्रुप आ गया है, बहुत बड़ी पार्टियां आ गई। और साल में एक बार कपड़े मिलते थे, अगर फट जाए तो टेलर डिपार्टमेंट तो था शुरू से ही, लेकिन वहां की बजाय दीदी जी की लौकिक माँ थी जिनका नाम था क्वीन मदर, मधुबन में रहती थी। शुरू शुरू में हम लोग जब आए हैं तो दीदी कहती थी मदर तुम इनके कमरों में जाओ गोपों के, भाइयों के, और जिसके कपड़े बनियाइन गंजी फटी हुई हो ले आओ, चक्की चत्ती लगा दो उसको। तो क्वीन मदर हमारी अलमारियों को ठीक करने के लिए कमरों में पहुंच जाती थी, और कोई का भी कोई कपड़ा अगर फटा हुआ है तो ऐसे नहीं फेंक दे, वो लिस्ट लिखाई जाती थी कि जो पिछले साल कपड़े मिले आपको उसमें कौन कौन से कितने पुराने हो गए, कितने बीच वाले हैं, कितने नए हैं, साल के बाद लिख करके देते थे। और अगर वो रिपेयर के लायक हैं तो फिर वो क्वीन मदर ले जाती थी और खुद चट्टी बैठ करके उन कपड़ों को पीस से लगा करके ठीक करके देते थे। अभी आजकल तो फट गया तो फेंक दिया, किसी को दे दिया, जमाना बदल गया। लेकिन बाबा हम सब की वृत्तियों को तो अनासक्त बनाना चाहता है, ऐसे नहीं एक है तो दो और इकट्ठा कर लो, क्योंकि संग्रह वृत्ति लोभ की वृत्ति में गिनती होती है। कईयों को आदत होती है जो मिल जाए इकट्ठा करते जाओ, संग्रह करते जाओ, और संग्रह करते करते दूसरों से भेंट करते करते आसक्तियां बढ़ती जाती, इच्छाओं की ऐसी उत्पत्ति होती है कि अगर एक इच्छा पूरी होती है तो दूसरी उसके पीछे पीछे आती है, खड़ी हो जाती है। इसलिए हमारी वृत्तियां कहाँ तक अनासक्त बनी है। भोजन मिल रहा है सबको, एक जैसा अच्छा भोजन मिलता है, लेकिन फिर भी होता है ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं। तो बाबा हंसी हंसी में कहते थे जो कहता है खाऊं खाऊं उसके पेट में बलाऊं, वो होते ना लंबे लंबे सांप जैसे कीड़े, बलाऊं उसको बोलते सिंधी में, बार बार उसको भूख लगती रहती है, खाना मिलता है खाता भी है लेकिन उसकी बिल भी देख करके बुद्धि चलायमान हो जाती, ये भी खाऊं ये भी खाऊं, 10 जगह हाथ मारेगा कहां से भी कुछ अच्छा मिल जाए। तो बाबा हम बच्चों को कहता बच्चे तुम तो बेहद के वैरागी हो, यहाँ तक बाबा कहता था एक खिड़की से जो मिल जाए दूसरे के पास नहीं जाना, उसकी तरफ नहीं देखना, वो क्या खा रहा है, उसने क्या पहना है, वो क्या खाता है, क्या बनाता है, तुमको जो मिलता है अनासक्त वृत्ति से बाबा की याद में रह करके खाओ। तो हमारी वृत्तियां अनासक्त बन जाए, नहीं तो कहीं न कहीं बुद्धि अंत समय में समोसे की भी याद आ जाएगी, लटक जाएगी बुद्धि, फंस जाएगी बुद्धि। इसलिए अंत में अगर जो अंतकाल जो सुमिरे वैसा उसको पद मिल जाए, तो अंत में एक बाबा ही बुद्धि में रहे और कुछ भी याद ना आए, न चीजें याद आए, न खाना पीना याद आए, न कोई चीज ऐसी जो देखी हुई बुद्धि में बैठी हो, न कोई व्यक्ति, तब हम अंत समय में बाबा की याद में शरीर छोड़ सकें और हमारी अंत मत्ते सो अच्छी गति सदगति को प्राप्त होगी। इसलिए बाबा हम सबके मार्ग में जो रुकावटें आने वाली उसके ऊपर ध्यान खिंचवाते हैं। बच्चे इस बात पर ध्यान दो, नहीं तो कहीं ना कहीं माया इस रूप में आकर के आपके योग को तोड़ देगी, बुद्धि उधर लटकी रहेगी। इसलिए बुद्धि कहीं भी अटकी हुई न हो, कहीं पर भी आसक्तियां न हो, बहुत अनासक्त वृत्ति बनाओ। खाना पीना सबको एक जैसा मिल रहा है, खाओ, पेट के लिए दो रोटी अच्छा खाओ, लेकिन ऐसा नहीं ये भी मिल जाए वो भी मिल जाए, ये वो खाता ये वो पहनता, तो इसके आधार से हम अपने आप को चेक करें। तो आज मेरा एक चिंतन चल रहा था कि आखिर कौन कौन सी बात है, ये तो बहुत छोटी सी बात है, इसमें तो कई लोग पास भी हो जाते हैं, चलो बाबा के घर में जो मिलता है खा रहे हैं, कईयों को अच्छा नहीं लगता है। गुजरात की जब बहनें आती है ना, तो मैं कभी कभी पूछता हूँ खाना खाया, तो खाना ही नहीं खाती, कहती हमको यहाँ अच्छा ही नहीं लगता है, क्योंकि वो आदत पड़ी हुई है उसमें चीनी डाल करके खाने की, दाल में भी चीनी होगी, सब्जी में भी चीनी होगी, तो उनको अच्छा ही नहीं लगता है। तो अपने साथ या तो ठिपला ले आएंगे या कोई न कोई ऐसी अचार ले आएंगे, उसके साथ खाना खा लेंगे, भंडारे में नहीं जाएंगे। कई ऐसे हैं अभी तक भी उनको भोजन अच्छा नहीं लगता यज्ञ का, और हम लोग जब से आए हैं कभी ऐसा नहीं लगा कि ये चीज नहीं खानी चाहिए, जो मिल जाए खा लो। तो बाबा ने एक अभ्यास डाला है कि जो मिल जाए, जब मिल जाए, जैसा हो खा लो, यज्ञ में बाबा का भंडारा है, दृष्टि दो बाबा की याद में खा लो। तो एक बात ये है कि हम अपनी वृत्तियों को अनासक्त बनाएं, और जितना हम अनासक्त बनते जाएंगे उतना ये सब बातें हमको अपनी ओर खींचेंगी नहीं, अंतमति हमारी अच्छी हो सकती है। लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं जो रुकावट डालती हैं, चाहे जैसे आज बाबा ने कहा एक सूक्ष्म छोटी सी इच्छा मान की है, मान लो मैं जो कुछ करता हूँ मुझे मान मिलना चाहिए, कई तो इसीलिए सेवा शायद करते हैं कि मेरा नाम फलाने अखबार में, फिर फलानी मैगजीन में, कोई मीडिया में आ जाए, कोई ज्ञानामृत में छप जाए, मेरा फोटो छप जाए, करेंगे थोड़ा सा और इतना बढ़ावा करेंगे, इतना विस्तार करेंगे, अगर 10 मैगजीन हमारे ज्ञान के निकलते हैं तो 10 फोटो बना करके 10 जगह उसको एडवर्टाइज कर देंगे, यहाँ भी छपे वहां भी छपे, तूने नहीं छापा हमारी, तुमने हमारा नहीं छापा, बहुत कंप्लेन करते रहते हैं। कोई होते हैं खूब सेवाएं करते हैं लेकिन कुछ इच्छा नहीं रखते, बाबा कहता है बताओ, क्योंकि समाज ऐसा है, दुनिया ऐसी है, देखना चाहती है आप क्या कर रहे हो। दुनिया वाले करते कम है, प्रोपोगंडा बहुत करते हैं, ऐसे ही अगर हमारी भी आदत बन गई, करते थोड़ा है बहुत बताते हैं, तो एक रीस हो जाती है, करते बहुत कम है लेकिन सो बहुत कर देते हैं। बाबा वो भी मना करता है कि ये भी एक रुकावट है, मान चाहिए, शान चाहिए, ये इसके पीछे भी बहुत टाइम लोगों का चला जाता है। इसलिए हम जो कुछ करते हैं, जो हैं, जैसे हैं, कम से कम जितना करते हैं उतना बताएं, अधिक नहीं सो करें। तो मान शान की इच्छाएं भी आत्मा को परेशान करती, क्योंकि अगर नहीं मिला, कोई ने किया और उसको नहीं पूछा गया, कभी कभी पहले हम पत्र पुष्प निकालते थे, दो पेज उसमें समाचार देते थे, 2-3 साल से हमने बंद कर दिया, हमने कहा डालना ही नहीं है, क्यों, 2 पेज के अंदर अगर मास के अंदर सबने सेवाएं की और 100 पत्र आ गए हमारे पास, इतना बड़ा भारत, 100 पत्र आ गए, अब 100 पत्रों का समाचार हम 2 पेज में नहीं ले सकते, जिसका समाचार नहीं छपता वही कंप्लेन करता है, तुम उसका डालते हो मेरा नहीं डालते हो, है उसमें कुछ भी नहीं, मैंने प्रदर्शनी लगाई, एक प्रदर्शनी में 100 लोग आए, 200 लोग आए, बस हमारा समाचार इसमें छपना चाहिए। मैंने कहा इसको हटा ही दो, इस कालम को खत्म कर दो, यहाँ से क्या जरूरत है किसी को बताने की, तुम जो सेवा कर रहे हो बहुत अच्छी है, अपने विंग के तरफ भेज दो। हम सभी मान शान की इच्छा के पीछे कई बार इतना भटक जाते हैं, बाबा हम सबको इतना सम्मान दे रहा है, इतना सब कुछ प्राप्तियां करा रहा है, आज तो बाबा ने ऐसा हम सबको कहा कि बच्चे जो बाबा के टाइटल्स हैं, जो बाबा की विशेषताएं हैं, जो बाबा की महिमा है, वो आप बच्चों का सम्मान है। कितनी बड़ी बात बाबा ने कह दी कि बाबा को जो कुछ कहा जाता, भक्ति मार्ग के अंदर कितने नाम भगवान के रखे हैं, कितने टाइटल से उसको याद करते हैं, कितने प्रकार के मंदिर बना करके उसके पूजते हैं, वो जितनी महिमा भगवान की गई है भक्ति के अंदर, या हम सभी जो भी कर रहे हैं ज्ञान सहित, वो सब टाइटल्स जो उनकी महिमा है वो आप बच्चों का समान है। कही ना आज बाबा ने बात, बाबा को अगर ज्ञान सागर कहा गया तो मेरे बच्चे मास्टर ज्ञान सागर है, अगर सर्वशक्तिमान है तो मेरे बच्चे ऑलमाइटी सर मास्टर सर्वशक्तिमान। तो जितनी बाबा की महिमा भक्ति मार्ग में की गई या ज्ञान मार्ग में हम बच्चे करते हैं, उस सब में मास्टर लगा दो, वो हमारी महिमा है। हम सिर्फ उस स्वरूप में स्मृति में स्थित रहें, मांगे नहीं किसी से, मांगने से नहीं मिलता है, दूसरों को देने से प्राप्ति होती। इसलिए बाबा ने कहा बच्चे अगर माननीय और पूजनीय बनना है, ये माननीय और पूजनीय सबका आप सम्मान मुझे प्राप्त हो, इच्छा हरेक की होती है, हरेक अंदर से चाहता जरूर है कि कम से कम हमसे रिस्पेक्ट से बात तो करें, भले अंदर से ऊपर से कुछ नहीं बोले, इन अंदर से तो एक भावना रहती ही है कि सब हमसे प्यार से रिस्पेक्ट से आदर पूर्वक बात करें, और करनी भी चाहिए क्योंकि हम सबका परिवार है, छोटा है या बड़ा। बाबा कहता है आजकल छोटों को भी प्यार के साथ साथ सम्मान चाहिए, नहीं तो भी रूठ जाते हैं। सबको देना है, सम्मान देना है, लेकिन इच्छा जो अंदर की कामना बनी हुई है वो भी हमारे मार्ग में रुकावट है। इसलिए बाबा से हमको इतनी मिल रही है सम्मान, इतनी प्राप्तियां हो रही हैं, बाबा ने जो हमें माननीय बनाया है, हम ऊंचे समान में रहना सीखें। क्योंकि जब तक हम समान में नहीं रहेंगे, स्वयं को स्वयं मान नहीं देंगे, तब तक मान की इच्छा बनी रहेगी और देह अभिमान समाप्त नहीं होगा। देह का अभिमान ऐसा है, कोई थोड़ा सा भी कुछ करता है, बुद्धि से करता है, तन से करता है, धन से करता है, उसको फौरन उसके रिटर्न की इच्छा रहती है। मैं इतना करता हूं, मेरा नाम होना चाहिए, मुझे पूछा जाना चाहिए। अगर कोई बहुत करता है और उसको पूछता नहीं है तो कहते चलो वो कुछ नहीं करता, उसको तो इतना बहन जी पूछते हैं, हमको तो कुछ नहीं कहते, हम तो इतना करके आए हैं, हम तो इतनी मेहनत करते हैं, हम तो इतना धन से करते, कोई करता है करके तो देखे, ऐसे लगता है जैसे वही यज्ञ को चला रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है जो कुछ थोड़ा सा भी यज्ञ में करता है, तन से मन से धन से अपनी बुद्धि से अपनी विशेषता से, उसको इतना अंदर से आ जाता है कि जैसे मैं ही सब कुछ कर रहा हूं। कराने वाला कौन है, यज्ञ किसका है, वो बात भूल करके आत्माएं थोड़ा सा करके उसके अभिमान में आ जाती और फिर उसको इतना बड़े रूप में प्रस्तुत करती है कि जैसे मेरे आधार पर ही सारा यज्ञ टिका हुआ है। लोग भी समझते हैं हाँ ये तो बड़ा जवाबदार भाई है, बड़ी जवाबदार बहन है, लेकिन अगर आज वो शरीर छोड़ दे, आज वो अगर यज्ञ से निकल जाए, आज कुछ हो जाए उसको, यज्ञ रुकेगा, बाबा का काम रुकेगा। और अच्छे करा और अच्छा कराएगा बाबा, क्योंकि बाबा का भगवान का ये यज्ञ इंसान का नहीं है। इसलिए मैं अगर करना चाहूं, मुझे अगर कोई चांस मिलता है भगवान के घर में किसी को कोई भी प्रकार का अगर सेवा का चांस, मदद करने का चांस मिल जाता है, तो एक भाग्य समझ करके उसको स्वीकार करना, न कि उसके अहंकार में आ जाना कि मेरे बिना तो यज्ञ चलेगा ही नहीं जैसे। लेकिन बाबा का यज्ञ अगर कोई आत्मा कोई अपने अभिमान वश चलाना चाहे और वो चली जाए निकल जाए, तो उससे और डबल अच्छे से अच्छा बाबा करा रहा है, हो रहा है, होता है। इसलिए कभी ये सूक्ष्म में भी नशा ना आए, कभी ये अभिमान ना आ जाए कि मेरे बिना नहीं चल सकते, क्योंकि कराने वाला बैकबोन कौन है। हमेशा एक स्मृति में रहना चाहिए कि ये यज्ञ किसका है और इसको चलाने वाला कौन है। इस स्मृति को जहां हम भूलते हैं वहां हमारी खुशी, उसका नशा, उसका जो सम्मान है वो गायब हो जाता है। ये भगवान का यज्ञ है, उसने रचा है, उसकी गुप्त प्रेरणा से सब कार्य हो रहे हैं, इसमें कोई भी आत्माएं निमित्त बनकर के अपना भाग्य बना सकते, वो भाग्य बना ले, ताकि कोई अगर विघन रूप बन जाएगा उसमें तो अपने भाग्य को तकदीर को लकीर लगाएगा, न कि भगवान के काम को रोक सकेगा। स्थापना का कार्य रुकने वाला नहीं है। इसलिए मान और सम्मान की इच्छा और चाहना भी इस मार्ग में बहुत रुकावट डालती है। सदा स्मृति रहे कि मैं पूजनीय आत्मा, पूज्य बनने के लिए भगवान के घर में आई हूँ। आत्माओं से पूज्य पूजा नहीं करानी है मुझे, ये आत्माओं से नहीं करानी है, लेकिन मैं पूज्य पद की अधिकार प्राप्त कर लूं, उसके लिए मुझे अपने अंदर पवित्रता, अपने अंदर दिव्यता, अपने अंदर रूहानियत भरनी है। अगर हमारे अंदर रूहानियत भरती जाएगी तो हम पूजनीय आत्मा बनती जाएंगे। पूज्य यहाँ पर हम नहीं, हम अपनी पूजा करा रहे। बाबा तो यहाँ कहता है बच्चे फूल भी स्वीकार करना तुम बच्चे नहीं कर सकते हो, ये पतित शरीर है। भले आत्मा पावन बन रही है लेकिन शरीर फिर भी पतित है, इसलिए तुम्हें फूल भी स्वीकार नहीं करने, तुम्हें हार भी नहीं लेने। ब्रह्मा बाबा कभी स्वीकार नहीं किया। और इस समय अगर आत्माएं करती हैं, कोई सम्मान से, कोई बड़े समझ करके पोस्ट पोजीशन के आधार से उनका करते हैं, भले करें, लेकिन निर्लिप्त भाव से वो स्वीकार करें। हम सबको बाबा परम पूज्य अपने समान बना रहा है, लेकिन उसका आधार जरा भी खिसकना नहीं चाहिए। और वो आधार है पूज्य बनने का मन वचन कर्म की संपूर्ण पवित्रता, हमारी विचारों की शुद्धता, हमारी मनसा की पवित्रता, हमारी पॉजिटिव, जो हमारे पॉजिटिव विचार चलते हैं, अच्छे विचारों में रमण करना, शुद्ध संकल्पों में रमण करना और एक आत्मिक स्थिति के अभ्यास को बढ़ाना। बार बार ये अभ्यास करो, मैं आत्मा इस देह से अलग हूँ। इस देह भान को जितना हम भूलते जाते हैं, आत्मा की प्यूरिटी की स्टेज बढ़ती जाती है। और प्यूरिटी की स्टेज बढ़ना माना अपने आप को पूजनीय बना लेना, माननीय बना लेना। अपने आप सबका अगर हम सत्कार कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं, बाबा को, परिवार को, पढ़ाई को, समय को, अगर हम कदर देते हैं, मान देते हैं, सम्मान से उनको देखते और चलते हैं, तो हमारा मान अपने आप बढ़ता, माननीय बन रहे हैं। इसलिए संगम युग पर माननीय वो आत्माएं हैं जो श्रीमत को मान देती हैं। अगर बाबा की श्रीमत को मैं मान देता हूं, अब श्रीमत बाबा की मिली हुई अमृत वेला योग करो, श्रीमत मिली है पढ़ाई मुरली पर ध्यान दो, श्रीमत मिली है संघ का संभाल करो, जो ऐसे वैसे का संघ है, जो परचिंतन और परदर्शन करने वाली आत्माएं हैं, जो यज्ञ के विरोध में बोलने वाली आत्माएं हैं, जो नेगेटिव चिंतन करने वाली आत्माएं हैं, उस संघ से संभाल करो। कभी कभी दीदी हम लोगों को कहती थी देखना यहाँ भी संभाल करना संघ की, हमारे को समझ नहीं आता था दीदी यहाँ यहाँ तो सब ब्राह्मणों का संघ है, यहाँ तो हंसों का संघ है, तो हंस मंडली है, यहाँ पर भी एक को कहा जाता है कि यहाँ संघ की संभाल करना, यहाँ पर भी मुझे संघ की संभाल करना, कि कोई की नेचर, कोई के संस्कार अलबेलेपन के हैं, कोई के आलस्य के संस्कार हैं, कोई के परचिंतन के संस्कार हैं, कोई के नेगेटिव देखने सोचने के संस्कार हैं। अगर उनका संघ लग गया यहाँ पर बैठ करके, आए हैं सेवा करने, और सेवा करते करते अगर ऐसी कोई आत्मा साथी मिल गई जो यज्ञ की ग्लानी कराने वाली है, पढ़ाई पर इसका ध्यान नहीं है, आलसी है, सेवा के प्रति वो रुचि नहीं है, यज्ञ का कदर नहीं है, बड़ों की वैल्यू नहीं है, और उस आत्मा का संग आपने कर लिया, तो न रहेंगे ऊपर के, न रहेंगे नीचे के, लटक जाएंगे बीच में। इसलिए बहुत संभाल चाहिए संग की। संग तारे कुसंग बोरे, कौन कौन सा संग कुसंग है? अभी पतित का संग तो है ही नहीं, बगुलों का संग कहाँ है? कहाँ है आप समाज में? आप तो आ गए वहां से, यहाँ बैठ गए। लेकिन यहाँ पर सेवाएं करते हुए दो मास तीन मास में अगर कोई आत्मा का नेगेटिव का संग मिल गया, व्यर्थ बोलने वाले का संग मिल गया, पर चिंतन प्रदर्शन करने वाले का संग मिल गया, तो भी हम अपने भाग्य को गंवा देंगे, बना नहीं पाएंगे। बहुत ध्यान देना है। इसलिए मुझे ऐसा कोई संग नहीं करना। आप चेक करो, मेरे अंदर भी ना हो, कोई को दूसरे को कहना नहीं है ये तो अलबेला है, ये तो आलसी है, नहीं, मुझे देखना है कि किसके संग से मेरी प्रगति हो रही है, मेरा योग अच्छा लग रहा है, मेरी उन्नति हो रही है, तो संग की बहुत संभाल चाहिए संगठन में, नहीं तो हमारा पतन होगा, उन्नति नहीं हो सकती। जो आत्म चिंतन करने वाली आत्माएं हैं, जो शुद्ध और श्रेष्ठ संकल्पों में रमण करने वाली है, जिनका पढ़ाई पर ध्यान है, जिनका सद विचारों पर ध्यान है, उनका संग करो। अगर इस पर संभाल कर लिया ना, तो बहुत अच्छी उन्नति बाबा के घर में हो सकती। तो रुकावट डालने वाली जो बातें चेक करो, कौन कौन सी बातें रुकावट डालती हैं। एक आलस्य रुकावट डालता है हमारे मार्ग में, बहुत रुकावट डालता है। ब्राह्मणों का छठा शत्रु आलस्य है, इसलिए संभालना कि योग के समय नींद ना आए, क्लास के समय नींद ना आए, मुरली के समय नींद ना आए, कम से कम नींद के समय नींद करो, मना नहीं, उसके लिए आलस नहीं, नींद के समय नींद का है। लेकिन जो हमारी उन्नति का समय है, अपनी पढ़ाई का समय है, स्वचिंतन का समय है, उसमें आलस्य ना आए और किसी को देख करके अलबेलापन ना आ जाए कि ये भी ऐसा करता है, तो पुराना है, इतना समय से क्लास तो बहुत अच्छी करा लेता, लेकिन इसकी धारणाएं क्या है। अगर मेरे को कोई को भी देखने की आदत पड़ गई, किसी की नेगेटिव बात को हम नोट कर लिया, तो उसमें अलबेलापन आ जाएगा। बाबा तो कहता है लेकिन बनता कहां है, कोई बनता तो है नहीं, पास तो आठ ही होने। बाबा की मुरली में भी अपनी मत को ऐड करने वाली आत्माएं बहुत मिल जाती है। इसलिए कोई भी प्रकार से अगर ऐसा है तो अलवेलापन कहां कहां रहा है। इस बार भी बाबा ने बहुत अच्छे शब्द दिए थे कि रायल अलवेलापन आपके मार्ग में रुकावट डालता है। अलवेलापन अलग है, रायल अलवेलापन बाबा की मुरलियों के ऊपर कटाक्ष करना, अपने परिवार की आत्माओं के ऊपर, बड़े महारथियों पर भी नजर डालना, ये भी ऐसे करते, वो भी ऐसे करते। कल मैं किसी को कह रहा था कि अगर उसके अंदर एक कमजोरी है और उसने 10 विशेषताओं से आगे नंबर लिया है, महारथी बना है, तो उसकी 10 विशेषताएं आप भूल करके और एक कमजोरी देख करके अपने आप को गिरा रहे हो। होगी कोई ना कोई कमजोरी भी होगी, कमी भी होगी, लेकिन उसने अगर वो पद प्राप्त किया, अगर उसको महारथी की नजर से लोग देख रहे हैं, तो जरूर उसने कुछ त्याग किया है, कुछ सहन किया है, कुछ सेवाएं की हैं, कुछ सफल किया है, कुछ कराया है, तब वो ऐसा बना, ऐसे नहीं बन गया महारथी। लेकिन उस महारथी की वो 10 विशेषताएं न देख करके वो वर्तमान समय ऐसा करता है, वो ऐसा करता है, वो ऐसे चलता है, वो ऐसे रहता है, उसको उस कमजोरी को देख करके हम उसको फॉलो कर लें, तो तकदीर किसकी बनेगी, रुकावट कौन डाल रहा है। इसलिए अलवेलापन ये जो रायल है, उस रायल अलवेलेपन को चेक करो, किसको मैं देखता हूँ, बातों को देखता हूँ, व्यक्तियों को देखता हूँ या बाबा को। अगर बाबा को देख रहा हूं तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा और व्यक्ति और बातों को देखूंगा तो ठहर जाऊंगा, ये विघन रूप बन जाए। इसलिए ऐसी बातों पर अगर हमारा ध्यान है, अलबेलेपन पर, आलस्य पर, ईर्ष्या पर, तो ईर्ष्या इतनी अधिक फैलती है, अगर एक को एक चीज प्राप्त हो गई दूसरे को नहीं मिली, एक आगे बढ़ गया दूसरा नहीं बढ़ रहा है, एक को पूछा जाता दूसरे को नहीं पूछा जाता, या एक के पास कोई साधन सुविधाएं होती दूसरे के पास नहीं होती, तो उससे भेंट करता है, उसके सुख में वो अपने आप को दुखी महसूस करता है, उसके दुख में वो अपने आप को सुखी महसूस करता है, ये ईर्ष्या की निशानी है। ईर्ष्या भी बहुत बड़ा एक विघ्न है, इसलिए बाबा कहता है जल सी है, जला देती है, ये क्रोध का सूक्ष्म अंश है। हर आत्मा का अपना भाग्य है, हर आत्मा की अपनी तकदीर है, हर आत्मा अपने पुरुषार्थ से अपना प्रारब्ध पा रही है, मैं उससे क्यों भेंट करूं, मेरा अपना भाग है, उसका अपना भाग है। अगर ये अंदर की भावनाएं हमारे अंदर जागृत हैं, तो हम किसी के भाग्य से भेंट करके अपने आप को ठहरती कला में नहीं लाएंगे। ईर्ष्या है, इच्छाएं हैं, गफलत है, बहुत से सूक्ष्म निराशा है, निराश आत्माएं, जिसको बाबा कहते हैं इसको दिल से कष्ट की बीमारी है, दिल की बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बीमारी, निराश, छोटी छोटी बात, मैं तो हूं ही ऐसे, मुझे तो कोई चांस ही नहीं मिलता, मैं क्या करूं, मेरे अंदर तो कोई योग्यता ही नहीं है। बाबा कहता अगर योग्यता नहीं होती, विशेषता नहीं होती, तो मेरे नहीं बनते, भगवान के बने हो, तुम्हारे अंदर हैं विशेषताएं, सिर्फ इन विशेषताओं को काम में लगाओ। हिम्मत की विशेषता है, दृढ़ता की विशेषता है, निश्चय की विशेषता है, भगवान को जानने और पहचानने की विशेषता है, बहुत सी विशेषताएं हैं, कईयों में दृढ़ता की विशेषता है, कईयों में सहन करने की विशेषता है। अगर देखा जाए तो हर आत्मा बाबा की जो बनी है, भगवान को जिसने पहचाना है, वो विशेष है, लेकिन उस विशेषता को काम में लगा दे, बस बीज है उसके पास, धरनी में डाले, अपने आप वृद्धि प्राप्त होगी। तो आप हम सभी बहुत विशेष आत्माएं हैं, इसलिए कभी भी निराशा को अपने पास आने नहीं देना, दिल से कष्ट नहीं होना कि मेरे पास कुछ नहीं है, बहुत कुछ है, जितना है उसको काम में लगाओ, बढ़ जाए, सेवा में लगा दो। तो हम सभी जो जो रुकावटें हैं मार्ग के अंदर, मंजिल ऊंची है, हम सभी चल रहे हैं, लेकिन कभी भी आत्मा हताश, निराश, उदास ऐसा न हो जाए जो उसके उमंग उत्साह के पंख कट जाए। आगे बढ़ती जाए और मंजिल को पाले। तो हमारी मंजिल ऊंची भले है, लेकिन साथी कौन है, हाथ किसके हाथ में है, इस नशे से चलो। कल बाबा की मुरली सुन रहे थे ना, जो 21 बात 13-14 ग्रुप में बात दादी कह रही थी, ग्रुप नहीं था वो, तो मधुबन निवासी पर्सनल बाबा से लास्ट में मिले थे। एक एक को बाबा ने कम से कम 10-10 मिनट, 15-15 मिनट वरदान दिए थे। पूरी नाइट, शाम को 7 बजे बाबा आए और सुबह 7 बजे गए, और कितने लोग मिले, केवल 118 भाई मिले 88 में। पूरे 118 वरदान हमको उस समय मिले थे। उस समय से वरदानों की लिस्ट शुरू हुई मुरली के अंदर। उसके 21 वरदान थे जो आज कल मुरली के अंदर कुछ 13-14 आप लोगों ने सुने, 14 सुनाए गए। उस समय 118 या 120 भाई पूरी नाइट जो बाबा से मिले हैं, वो लास्ट मिलन था। जिस प्रकार से हम सभी एक एक बाबा के आगे आए बैठे और बाबा ने एक एक को वरदान दिया, 88 की बात है, और वो 88 की मुरली अभी रिवाइज हो रही है। उस समय के वरदानों के बाद ही ये वरदानों की माला शुरू हुई और मुरली के नीचे वरदान आए, उसी से तैयार किए गए। तो हम सभी इतनी भाग्यशाली आत्माएं हैं जिनको भगवान ने वरदानों से पाला है, जिनको अनेक प्रकार की शिक्षाएं मिल रही हैं, वरदान मिल रहे हैं। हम सभी बाबा की श्रीमत की पालना के अंदर हैं, बाबा का हाथ है हम सब पर, इसलिए कोई भी रुकावट हमारे मार्ग में विघ्न रूप न बने, हम अपनी मंजिल को प्राप्त कर लें। आगे बढ़ते चलो हिम्मत से, उमंग से, उत्साह से। जितना जिसको खुशी है, उमंग है, उत्साह है, उसका योग निरंतर है, सहज है, कोई उसके लिए मेहनत नहीं है। मेहनत उसके लिए है जो इन बातों में, कोई निराश है, कोई उदास है, कोई संग दोष में आ गया है, कोई परचिंतन में है, कोई परदर्शन में है, कोई ईर्ष्या में लगा हुआ है, कोई जेलसी में है, कोई कुछ कर रहा है, अगर इस प्रकार की बातें हैं तो रुकावट है। अगर उससे वो मुक्त है तो कोई भी मार्ग के अंदर रुकावट नहीं है, बाबा उसको साथ लेकर के मंजिल पर पहुंचा देगा, वो संपन्न और संपूर्ण बन जाएगा। ओम शांति।